نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. عشان ان شاء الله تعالى سورة البقرة آيات 83 سے 91 تک کریں گے. تفسير دیکھتے ہیں آيات نمبر 83 سے. یہ رکوع اس لحاظ سے بہت ہی زیادہ اہم ہے کہ اس رکوع میں اس نصاب کا ذکر ہے جو میثاق بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ان کے اوپر تور کو کھڑا کر دیا گیا تھا، تور پہاڑ کو معلق کر دیا گیا تھا، اور ان سے کہا گیا تھا کہ لیتے ہو کہ نہیں، عہد لیتے ہو کہ نہیں. آیت نمبر 63 میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں. وہ میثاق کیا تھا؟ کیا وہ بیسکس تھیں جس کا عہد بنی اسرائیل سے لیا گیا؟ تو یہاں سے بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک اور رخ ہم دیکھیں گے. یہاں ان کا صرف قصہ نہیں سنایا گیا بلکہ عبرت ہے عقل والوں کے لیے، اور جہاں ان کو بہت سارے اور احکامات بھی دیے گئے تھے، مگر کچھ اہم ترین چیزوں کا ذکر یہاں پہ آیا ہے، وہ جن کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں 10 کمانڈمنٹس، جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی جب وہ تور پہ گئے تھے. تو تختیوں کے اوپر 10 احکامات دیے گئے تھے نا. انشاءاللہ تعالی ہم ان کی ڈیٹیل تو پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل میں آگے جا کے. یہاں پہ مختصرا ان کا ذکر چند آیات کے اندر کیا گیا ہے. تو یہ شریعت کے احکامات ان کو ملے تھے اور یہی ہمارے لیے بھی. مگر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شکایت کی ہے کہ وہ بھی پھر گئے، اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ان سے جو مطالبہ کیا تھا انہوں نے پورا نہیں کیا، حالانکہ یہ بیسک تعلیمات تھی، بیسک. اور آج بھی یہی حالات ہیں کہ ہم سے جو مطالبہ کیا گیا ہے ہم بھی، کیونکہ دیکھیں دین کی جو بیسکس ہے نا، چاہے وہ یہودیت میں ہو، نصرانیت میں ہو، جو اللہ کی طرف سے ادیان آئے ہیں ان کی بیسکس تو سیم ہی ہیں. اور ان میں سب سے پہلی کیا چیز ہے، وہ آپ وہی دیکھیں گے جو ہمارا کلمہ ہے، وہی وہ پہلی چیز ہے جو ان کو بھی دی گئی تھی، تو کوئی فرق نہیں ہے. ہاں بعد میں جو کئی چیزیں ہیں، جو برانچز ہیں، کوئی آگے اور شریعت کے احکامات ہیں، ان میں تو ٹھیک ہے تبدیلی آئی، لیکن بیسک چیزیں وہی رہیں. اور آپ کتنی زیادہ سملیرٹی دیکھیں گے ان احکامات میں جو ہمیں دیے گئے ہیں ان میں. اسی وجہ سے ہمیں یہ بات یہاں پہ بتائی گئی ہے، کیا ان سے عہد لیا گیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب عہد لیا گیا بنی اسرائیل سے. یہ ایسا عہد ہے جو ہر معاشرے کے، اگر آپ نے چاہتے ہیں کہ اس میں اصلاح ہو، بہتری آئے، تو یہ عہد وہ باتیں، وہ پوائنٹس آپ کو بتاتا ہے کہ ان پہ عمل کرنا ضروری ہے کسی بھی سوسائٹی کے لیے. اور اللہ تعالی نے کس طرح سے یہ عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے، کیسے لیا تھا؟ لیا ہم نے کہا گیا نا، کس نے لیا؟ اللہ تعالی نے. کس طرح لیا؟ پیغمبروں کے ذریعے، ٹھیک ہے. یہ ان سے وعدہ لیا گیا، سمجھ لیا. کیا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم نہیں عبادت کرو گے مگر اللہ کی. یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا، پہلے امر نہیں آیا کہ نہ عبادت کرو، تعبدون آیا، تم عبادت کرو گے. یعنی کیا اس کا معنی؟ فیوچر میں آیا نا. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کوئی بات کریں نہیں کرو، اور دوسرا آپ کہیں تم یہ نہیں کرو گے، تو کس میں زیادہ زور ہے؟ نہیں کرو گے تم، اس میں زیادہ زور ہے نا. تو تم نہیں کرو، یہ بھی ایک حکم ہے، لیکن نہیں کرو گے تم، یہ اس میں تاکید زیادہ ہے، زور زیادہ ہے، سختی زیادہ ہے، شدت زیادہ ہے. تو تو پہلا ہی حکم کہ تم نہیں عبادت کرو گے کسی اور کی سوائے اللہ کے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے پر سب سے بڑا حق ہی اللہ کا. تو ان کو بھی توحید کا حکم سب سے پہلا حکم ملا. کیونکہ سب سے پہلا حق دیکھیں خالق کا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. وہ حق رکھتا ہے کہ انسان اس ہی کی عبادت کرے. اور عبادت میں کیا ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں، عبادت، غلامی اور جو بھی جتنے بھی عبادت کے ریچولز ہیں وہ سب اس میں آ جاتے ہیں. اس کے ساتھ یعنی کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، کسی اور کو ساجے دار نہ ٹھہرائے، حصے دار نہ ٹھہرائے، پارٹنر نہ ٹھہرائے. لوگ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے آگے بھی مانگتے ہیں، لیکن یہ قبر والوں سے بھی ہم مانگ لیتے ہیں، ان کے آگے بھی ہماری دعا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ لا تعبدون الا اللہ، سوائے اللہ کے کسی کی عبادت ہے ہی نہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو بھی کیا شامل اور ساتھ اللہ تعالیٰ کو بھی عبادت کر لیں. عبادت میں دعا بھی آتی ہے، عبادت کا ایک جز، ایک پارٹ دعا بھی ہے. تو یعنی دعا بھی کسی اور سے نہیں مانگ سکتے. اسی طرح کسی اور کے نام کی نیاز دینا، قربانی کرنا کسی اور کے نام کی، کہ اللہ کے نام کی بھی کرتے ہیں ہم قربانی مگر فلانے کے نام کی بھی نیاز دیتے ہیں، فلانے کے نام کی بھی قربانی کرتے ہیں. یہی تو شرک ہے، یہی شرک ہے. ہم اللہ سے بھی امید باندھتے ہیں، دوسرے اور لوگوں سے بھی امیدیں باندھتے ہیں، طاقتور لوگوں سے امیدیں باندھتے ہیں، طاقتور ملکوں سے باندھتے ہیں، طاقتور کمپنیز جو بڑی بڑی ہیں ان سے امید باندھتے ہیں، یا کوئی بڑے عہدے پہ اس سے امید باندھتے ہیں. تو یہ بھی شرک ہے. امید بھی صرف اللہ سے، بھروسہ بھی صرف اللہ پہ، توکل بھی صرف اس پہ. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافی ہی کیا ہے، اور کیا ہے کفر بھی؟ یہی تو ہے کہ اللہ کے ساتھ اوروں سے بھی امیدیں باندھی، ان سے امید باندھے. اور آج کا سب سے بڑا جو شرک ہے، جو جس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ کوئی بت نہیں ہے. یونیورسل ایک ایسا بت ہے، پتھر کا نہیں ہے، وہ سب ہی اس کی عبادت میں لگ گئے. چاہے کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، اور کوئی بھی ہے، مسلمان ہے، اس بت کی ساری عبادت کرتے ہیں. اور وہ بت کیا ہے؟ وہ انسان کا نفس ہے. نفس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین معبود جس کی پوجا کی جاتی ہے وہ انسان کا نفس ہے. کہ انسان اپنے نفس کی ہی پوجا شروع کر دے، یعنی اپنے آپ کی، اپنا ہی غلام بن جائے، اپنی خواہش کے آگے ہی ہتھیار ڈال دے. میں اپنی بات کو نو نہیں کر سکتی، جو میرا دل چاہتا ہے بس وہی کروں گی، جو میرا دل نہ چاہے وہ نہیں کروں گی، جو میری مرضی ہوگی وہ ایسا کروں گی، جو میری مرضی نہ ہوگی تو وہ ویسا نہیں کروں گی. تو بتائیں تو صحیح، پھر اور کافری کیا ہے؟ جب آپ نے اپنے دل کی پوجا کرنی ہے، اپنے نفس کی، اپنے آپ کی پوجا کرنی ہے، تو پھر اللہ کی پوجا تو نہیں ہو سکتی. تو سارے جہانوں کے رب نے یہ حکم دیا، جس نے زندگی دی، اب جس کے پاس لوٹ کے جانا ہے، کہ دیکھو یاد رکھنا کسی اور کی غلامی نہیں کرنی، کسی اور کی غلامی نہیں کرنی سوائے اللہ. غلامی کا حق، اس کو پوجنے کا حق صرف صرف انسان کو کس کو پوج سکتا ہے؟ اللہ کو. آپ دیکھیں آج تو یہ حالات ہیں کہ شعر و شاعری میں بھی باقاعدہ ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ میں تیری پوجا کرتا ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں. یعنی اپنے جس سے بھی محبت ہوتی ہے، محبوب ہوتا ہے، اس کے لیے یہ کئی گانے اس طرح کے سننے میں آئے ہیں کہ جن کے اندر باقاعدہ پوجا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور ہمارے مسلمان بھی بڑی لے لے کے ساتھ گاتے ہیں اور بہت خوشی سے کرتے ہیں، جبکہ ہمارا تو پہلی بات ہی یہی ہے، ہمارے دین کی بیس ہی یہی ہے کہ عبادت اور کسی کی کرنی ہی نہیں سوائے اللہ. عبادت میں اطاعت بھی ہے، عبادت میں سجدہ بھی ہے، عبادت میں رکوع بھی ہے، عبادت میں نماز بھی ہے، عبادت میں قربانی بھی ہے، عبادت میں نظر و نیاز بھی ہے، عبادت کے اندر دعا بھی ہے. سب عبادت کے کمپوننٹس ہیں، جزویات ہیں، ٹھیک ہے، اسی کے اندر آتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتے. उसके बाद इंसानों में पहला हक मेरे रब का जिसने पैदा किया, उसके बाद इंसानों में सबसे पहला हक किसका है? वो जो आपके लिए सबब बने इस दुनिया में लाने का, आप दुनिया में उनके जरिए से आए, यानी जरिया बने, थ्रू उनके आप दुनिया में आपका वजूद है आज। अल्लाह ने तो पैदा किया मगर उनको सबब बनाया, तो वो है ना कि जो इंसानों का शुक्र अदा नहीं कर सकता, अल्लाह ताला का भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। तो इंसानों में सबसे पहला हक वालदेन का है, तो वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करो। एहसान, एहसान मैंने आपको जैसे बताया, एहसान क्या चीज होती है? हदल नहीं, बराबरी नहीं, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया मैं भी इनके साथ ऐसा करूंगी, ये हमें अच्छा करते थे बचपन में तो हम भी आज इनके साथ अच्छा करें, नहीं इन्होंने तो हमारी कोई केयर ही नहीं की, मुझे याद है बचपन में तो ऐसा करते थे, ये करते थे, वो करते थे। वो तो आपने बदला थोड़ी देना है कि उन्होंने मेरे साथ ये नहीं किया, देखो कहाँ पे उठा के मेरी शादी कर दी, इन्होंने मेरे साथ ये जुल्म किया, बचपन में हमें कहीं घुमाते नहीं थे, बचपन में खिलौने नहीं लेके देते थे, बचपन में ईट आउट नहीं कराते थे, हाँ तो अब हमने भी नहीं करना इनके साथ कोई अभलाई। नहीं, वालदेन के साथ एहसान का हुक्म है। एहसान क्या होता है? यानी हक से भी ज्यादा बढ़ के देना, यानी बेहतरीन सलूक, बेहतरीन मामला, यानी सबसे अच्छा, बी द बेस्ट, ये समझ लें, बी द बेस्ट। कैसे बेस्ट होंगे? यानी जिस किस्म की भी उनको आपसे एक्सपेक्टेशन है या जो वो आपसे चाहते हैं, चाहे कोई माली मदद है, चाहे अच्छी बात करना है, चाहे कोई भी और चीज, जो जो ऐसा वो आपसे चाहते हैं, उसी तरह आप उनके साथ खूबसूरत मामला करें। खूबसूरती है ना, हुसन से है ना एहसान, उनको खुश कर दें। ठीक है, एक तरह से ये बात कहने की है कि खुश कर दें, उनका दिल राजी कर लें, दिल जीत रहे उनका, वालिदैन का। तो ये है हक से बढ़ के देना, ये है एहसान। अब इसके अंदर चाहे वो खिदमत से खुश होते हैं, चाहे वो आपकी दीन को पढ़ने से खुश होते हैं, चाहे वो आपके पैसे अगर आप उनको देते हैं तो फिर तोहफे देते हैं उससे खुश होते हैं, जिस तरीके से भी खुश होते हैं, उनको पूछने से खुश होते हैं, उनको कॉल करें उससे खुश होते हैं, इस तरह से भी खुश होते हैं, उनको बस खुश करना, उनका दिल जीतना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि एक साहबी ने पूछा, मेरे सबसे अच्छे बेस्ट बिहेवियर का हकदार कौन है? कौन होगा आपके बेस्ट बिहेवियर का हकदार? फ्रेंड्स होंगी मेरे ख्याल में ना, उनके साथ बहुत मजा आता है, फ्रेंड्स और कौन, और लोग जिनके साथ हमारी बड़ी बनती है, अच्छी बनती है वो, या लोग जो बाहर के लोग हैं, वरना फिर वो कहेंगे क्या कि हमारा तो अखलाक ही अच्छा नहीं है। तो घर वाले इनके साथ तो जैसे मर्जी रहो, ये तो अपने ही है ना, कोई बात नहीं। सबसे ज्यादा मेरे बेस्ट बिहेवियर का हकदार कौन है? फ्रेंड्स नहीं, फरमाया तुम्हारी माँ। उसने पूछा फिर कौन? फरमाया तुम्हारी माँ। उस शख्स ने पूछा फिर और कौन? उसके बाद कौन? फरमाया तुम्हारी माँ। यानी प्रायोरिटी सबसे पहले किसको दी गई? माँ को। उसके बाद किसका दर्जा आता? फरमाया अभी भी नहीं कि फ्रेंड तुम्हारा बाप, उसके बाद बाप का। और बुखारी की हदीस है 5975 पे, कि लंबी हदीस है, उसके अंदर एक बात है कि अल्लाह ताला ने तुम पे माओं की नाफरमानी को हराम कर दी, और उनसे नाहक मुतालबात करना भी हराम कर दिया, कि बेजा आप मुतालबे उनसे करते रहे, कभी आप उनसे कह रहे हैं कि भाई मुझे ये इतने पैसे दें, ये करें वो करें मेरे लिए, नाहक मुतालबात भी करना हराम कर दिया। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दोनों यानी वालदेन तेरी जन्नत है और तेरी जहन्नम, दोनों ही तेरी जन्नत है और तेरी जन्नत, यानी चाहे तो इनको राजी करके जन्नत में चले जाओ, जहां इनको नाराज करके जहन्नम में चले। एक और हदीस में आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब की रजा वालिद की रजा में, रब की नाराजगी वालिद की नाराजगी में। खुद सोच ले, वालिद राजी है तो अल्लाह राजी है, वालिद नाराज है तो रब नाराज है। तो उन्होंने भी इन चीजों को छोड़ा, और आज हमारी भी यही हालात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इसकी पेशीन गोई भी कर दी है कि मतलब जो कयामत की निशानियों में से एक निशानी है, कि लौंडी अपने आका को जन्म देगी, यानी ऐसी औलादें होंगी कि जो माँ को ऐसे ट्रीट करेंगी जैसे उनकी नौकर लौंडी है उनकी। और आज वो वक्त आ गया। फिर आप ने आखिरी वक्त की निशानियों में ये भी फरमाया कि दोस्त को देखकर तो बाहें फैला देंगे और बाप को देख के रास्ता बदल देंगे। हालांकि माँ बाप की नाफरमानी की सजा ऐसी है कि वो मरने से पहले भी इंसान को भुगतनी पड़ती। दूसरे गुनाहों की सजा तो आखरत में है ना, लेकिन ये ऐसी सजा है जो दुनिया में भी इंसान को भुगतनी पड़ेगी। बल्कि एक हदीस में आता है, ये हदीस है तिब्रानी की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला 7 आसमान के ऊपर से लानत भेजता है और उनमें से हर एक पर 3 बार लानत भेजता है और हर एक को ऐसी लानत भेजता है जो उसको काफी है। ये 3 लोगों पे अल्लाह ताला लानत भेजता है, जिस पे रब लानत भेज दे सोचिए फिर उसका बंदे का हाल क्या। पहला बंदा कौन कौन है, हर एक पे 3 3 दफा लानत भेज। पहला बंदा कौन, कौम लूत का अमल करने का, ये जो गे और लेस्बियंस आजकल ये चीजें चल गई होमोसेक्सुअल्स की, इसके ऊपर अल्लाह पाक ने 3 बार लानत भेजी है। अल्लाह की रहमत से दूर है ये, मलऊन है ये। फिर नंबर 2, गैर अल्लाह के लिए जिबा करने वाला, गैर अल्लाह के लिए जिबा करने वाला, कुर्बानी करने वाला। अल्लाह के नाम पे तो कुर्बानी दी जाती है और ये दूसरों के नामों की कुर्बानियां देता है। 3 बार इस पे लानत। और तीसरा कौन है, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला है, इसके ऊपर 3 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी, यानी अल्लाह ताला ने लानत भेजी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और एक और हदीस है तिब्रानी की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 500 मील की मसाफत से जन्नत की खुशबू आएगी, लेकिन अपने काम का एहसान जिताने वाले को, माँ बाप के नाफरमान को और आदि शराबी को ये खुशबू तक नसीब नहीं होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह रहम करे, हम तो जरा से किसी के साथ अच्छाई कर रहे थे फौरन चैन नहीं आता जब तक एहसान ना जता ले। याद है तुम्हारे साथ हमने ये किया था, याद है जब तुम आए थे तुम्हारे पास कुछ नहीं होता था तो हमने ही तुम्हारी टेक केयर की थी, तुम्हें याद है जब तुम लोगों के ऊपर ये हालात आए थे तो कौन था जो तुम्हारे लिए खड़ा हुआ था। अल्लाह अकबर, तो हम कितना जल्दी एहसान जताते हैं, उसको तो जन्नत की खुशबू भी नहीं आएगी। ना रहम फरमाए, अल्लाह हमें माफ कर दे कि हमने कभी भी किसी के ऊपर एहसान जताया हो, कोई किसी के साथ भलाई करके, और माँ बाप का नाफरमान जो है, जो माँ बाप का नाफरमान है उसको भी जन्नत की कोई खुशबू नहीं आएगी, और इसी तरह आदि शराबी को। अल्लाह तआला हम सबको माफ फरमा दे कि हमने वालदैन के हकूक में जो कोताहियां की, और उसके बाद वज़ील कुर्बा और कराबतदार रिश्तेदार, और इसके अंदर रहम के रिश्ते जो आ जाते हैं वो सबसे पहले, यानी जो ब्लड टाइज हैं, जो खून के रिश्ते हैं, और उनमें करीब तरीन। देखिए हम माँ बाप के साथ तो है ही, उनका तो पहले जिक्र आ गया, कराबतदारों का माँ बाप को अलग कर दिया गया, हालांकि वो भी रिश्ते ब्लड टाइज हैं ना, लेकिन उनका इतना ज्यादा वो है दर्जा कि उनका जिक्र अलग करके दिल कुर्बा रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्कीनों, क्या क्या इनका आगे तो और बात आ रही है, वकूल उन्ना से हुस्न, यानी उनके साथ भी एहसान करो। पीछे की तरफ जाए ना, जैसे मैं आपको कहूँ कि देखें अपने वालदैन का ख्याल रखें और बहन भाइयों का भी और गरीबों का भी और आप अपने हमसायों का भी, तो क्या मतलब है, यानी उन सब का ख्याल रखें ना। बात एक दफा कही थी लेकिन सबके साथ ही वो अटैच्ड है, तो वह बिल वालिदैन एहसाना के अंदर आगे जाके और दिल कुर्बा एहसाना और बिल यतामा एहसाना और बिल मसाकीन एहसाना सबके साथ आ जाती है। ठीक है, तो सबके साथ एहसान एहसान एहसान, ज़िल कुर्बा के साथ हम क्या करते हैं, आदल। हम क्या करते हैं, आदल, यानी हम किसी काम का जो उन्होंने हमारे साथ किया है कैसे हम रिश्तेदारी निभाते हैं उसका उस तरह ही बदला दे देते हैं। वो हमें बुलाते हैं हम भी उनको बुला लेते हैं, वो हमें सलाम करते हैं हम भी उनको सलाम कर देते हैं, वो हमें तोहफा देते हैं हम भी उनको तोहफा देते हैं, वो हमें दावत पे बुलाते हैं हम भी उनको दावत पे बुला लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, कि ये सिला रहमी नहीं है, समझे, ये सिला रहमी नहीं है, ये क्या है, ये बदला है। सिला रहमी फिर क्या है, सिला रहमी करने वाला वो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इससे सिला रहमी का मामला ना किया जा रहा हो तब भी वो सिला रहमी करे, तब भी वो जोड़े, यानी जब उससे जोड़ा नहीं जा रहा तब भी वो अल्लाह के खौफ से जुड़ के रहे। समझ आई? कोई कुछ भी करे मगर हम किस लिए जुड़े? कि अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई अल्लाह और आखरत के दिन पे ईमान रखता हो ना, उसको पता क्या करना चाहिए? अगर आपका ईमान है ना, तो फिर सिला रहमी करें। यानी क्या मतलब है? रिश्तों को जोड़े। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। तो रिश्तेदारी टूटती कैसे है? कैसे टूटती है? जब हम एहसास नहीं करते, जब हम कनेक्टेड नहीं रहते, जब हम मुलाकात नहीं करते, जब हम बदगुमान हो जाते हैं। बदगुमानी से बहुत ज्यादा रिश्तेदारी टूट जाती है, क्योंकि गुमान गलत किया नहीं और रिश्ता टूटा नहीं। जब हम रिश्तों की केयर नहीं करते, जब हम उनकी खुशी गमी में शरीक नहीं होते, रिश्तेदारियां टूट जाती हैं। देखिए, याद रखिए, रिश्तेदारी जोड़ने से जुड़ती है। इसके लिए यानी एफर्ट करनी पड़ती है। एफर्ट, एफर्ट के बगैर नहीं जुड़ेगी। अगर आप एफर्ट करेंगे तभी जुड़ के रहेगी। तो इसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हम हैं जो कुरान पढ़ रहे हैं। रिश्तेदार हो सकता कुरान नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं ना, तो उनसे तो एक्सपेक्ट नहीं करते। हमें ये करना, यानी उनके साथ अच्छा मामला, अच्छा सलूक, जुबान के साथ भी अच्छा करना, और भी जिस्म के साथ भी उसने सलूक करना, यानी आजी से पेश आए। जिस्म से भी आपके जाहिर होना चाहिए कि आप अच्छे तरीके से उनके साथ पेश आ रहे हैं। तकबर ना करें उनके साथ। एहसान की एक ये भी शक्ल है कि उनके लिए दुआ किया करें, रिश्तेदारों के लिए भी, वालदेन के लिए भी। हाँ, जिनके वालदेन दुनिया में नहीं है, वो कैसे उनके साथ एहसान करेंगे? वो भी उनके लिए दुआ करें, और उनके जो प्यारे थे उनके साथ अच्छा करें, चाहे वो उनके रिश्तेदार थे, जैसे माँ है तो खाला, बाप है तो चचा ताया, तो भी इसी तरह माँ की तरफ से हैं तो खाला मामू, नानी नाना, दादी दादा, ये सब रिश्तेदारियां हैं ना। तो इनके साथ बना के रखनी है, समझ आ गई? बना के रखनी। और जितना किसी का करीबी रिश्ता है उतना ही उसका हक ज्यादा है, ये याद रखिए। जितना करीबी रिश्ता है, यानी आप सोच लेना, माँ बाप के बाद करीब तरीन रिश्ता किसका है? बहन भाइयों का। उसके बाद खाला मामू चचा पुप्पी, इनका मतलब अगर दूसरी तरफ देखा जाए, दादा दादी नाना नानी, वो तो पहले आ गए ना, उसके बाद चचा मामू पुप्पी खाला, ये सब रिश्ते आ गए। फिर आगे एक्सटेंडेड फैमिलीज आ गई, कजन्स आ गए। लेकिन जैसे जैसे रिश्ता दूर होता जाएगा, हक कम होता जाएगा। जितना रिश्ता करीबी है उतना हक उसका ज्यादा है। और उसके बाद फिर देखिए, आप ससुराली रिश्ते भी इस तरह से रिश्तेदारी में शामिल हो जाते हैं कि हस्बैंड की तरफ से वो भी रिश्ते बन जाते हैं। वल यतामा, और यतीमों को मैंने बताया, यतीम जिसके ऊपर बाप का साया नहीं, और यतीम वो है जो महरूम है ना, जो महरूम है शफकत से, और मिस्कीन भी वो है जो महरूम है, माली तौर पर महरूम है। तो महरूमीन के लिए रब तआला ने फरमाया कि इनके साथ एहसान करो, उसने सलूक करो। यानी आप इनको समझ लें ऐसे के जैसे ये चलते फिरते बैंक है, ठीक है? चलते फिरते बैंक है, यानी इन पे अगर मैंने इन्वेस्ट किया तो आखरत इन्वेस्टमेंट बैंक में मैंने अपने पैसे को जमा करा दिया, ये वहां पे जमा होने लगेगा, मल्टीप्लाई होने लगेगा। देखिए, एक होता तर्स खा के किसी के साथ अच्छा मामला करना। तर्स खा के आप मामला तो कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत वक्ती तौर पे होता है, और थोड़ी देर के लिए होता है। इसकी बजाय आप ये महसूस करें कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। जब आपको इन्वेस्टमेंट का लालच होगा ना, फिर आप हमेशा करेंगे, और ये मुझे अल्लाह की नजरों में मकाम दिला देगा। ये इस उम्मीद के साथ ये काम करें, तो ये बहुत बड़ा मोटिव है, ठीक है? ये मुझे जहन्नुम से निजात दिला सकता है, ये मुझे अल्लाह के हान मकाम दिला सकता है। लेकिन देखिए, आप ये चीज भी आज खत्म हो गई, खराबत दारों का ये हाल हो गया कि हमें बार दफा अपनी बहन भाइयों के बच्चों का नहीं इल्म होता कि उनके नाम क्या है। हमें बार दफा ये नहीं पता होता किसी के ऊपर गम खुशी क्या आया, कोई बीमार है या क्या किसी के हालात है। ये तो वो ही कर सकता है ना जो कनेक्टेड रहे। जब कनेक्टेड ही नहीं रहेंगे तो फिर ये कैसी सारी चीजें पता चलेंगी। तो जब आप रिश्तेदारों से दूर रहेंगे, जब आप किसी से बात नहीं करेंगे, जब आप किसी के साथ का अता पता नहीं लेंगे, तो आपको कहाँ ये मालूमात होंगी, कैसे एहसान कर सकेंगे। तो जब अगर आप एहसान करने का सोचते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि उनके साथ वेल कनेक्टेड रहें। इसी तरह यतीमों मिसकीनों को आपको कैसे पता चलेगा, जब आप अपनी कम्युनिटी में हालात का पता रखेंगे, कम्युनिटी में मिलें जुलेंगे। और अगर आप सिक्लूडेड रहते हैं, मैंने तो नहीं किसी से मिलती और किसी से मिलने का फायदा क्या, लोगों से तकलीफ ही पहुंचती है, बेहतर है अपने तक ही इंसान रहे, कोई जरूरत ही नहीं है हमें कि हम किसी को मिलें जुलें या कहीं जाएं या हम किसी की खैर खैरियत मालूम करें या किसी का सर सलाम दुआ करें या हम मस्जिद जाएं या लोगों में घुले मिलें। मस्जिद भी गए तो बस अपनी नमाज पढ़ी और मुंह ध्याने वापस आए, कोई जरूरत नहीं किसी से बात करने की। फिर मुझे बताएं आपको पता कैसे चलेगा। ये वही कर सकता है जो वेल कनेक्टेड है। तो लोगों के साथ मिलजुल के रहें, सिक्लूडेड मत रहें, ठीक है। और एक बहुत अहम बात यहाँ पे देखने की ये है, जैसे हम देखते हैं ये उनसे अहद लिया गया, हमसे भी अहद लिए गए इस मामले में, मिस्कीनों के साथ सलूक करने में, यतीमों के साथ सलूक करने में, यतीम की परवरिश करने वाले के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली उठा के साथ मिला के इशारा फरमाया कि जैसे ये उंगलियां करीब करीब है ना, इस तरह हम करीब होंगे। तो आज क्या हालात है, हमारे घरों में बहुत जगह है, लेकिन किन के लिए, जो हमारे जैसे स्टेटस रखने वाले लोग हैं या हमसे ऊंचे स्टेटस में माशरे में, उनके लिए बिस्तर अलग है, क्रॉकरी अलग है, उनके लिए हमारी स्माइल अलग है, हमारे लिए हमारे बिहेवियर्स अलग है। अगर जो माशरे के महरूम लोग हैं, हाँ वो रिश्तेदार हैं, हाँ उन्हीं रिश्ता रखते हो, मगर उनके साथ हमारी नजरें बदल जाती हैं। क्यों, क्या हो जाता है, इनसे अच्छा किया तो बदला देने वाला तो कोई है नहीं, मिस्कीन हमें क्या बदला देगा, ये लिहाजा से क्या करना अच्छी बात है। और ये यतीम, इसको बदला देने वाला तो वैसे कुछ नहीं है, तो बेचारे वैसे ही खुद ही गिरते पड़ते फिरते हैं, खुद ही मोहताज है, तो ये हमें क्या देंगे, तो लिहाजा इनके साथ भी कोई जरूरत करने की जरूरत है। तो आप देख लें कि जहां पे हमें कोई बदला नहीं मिल रहा होता वहां हमें बेपरवाह हो जाते हैं, इसको तो जैसा तैसा भी दे दो, कोई कोई बात नहीं, इसको तो गुजारा ही कराओ। यतीम के सर पे हाथ रख देना, अल्लाह ताला इस यतीम के बालों के बराबर वो हाथ रखने वाले के गुनाह झाड़ देगा। और ये चीजें हैं जो दिल की सख्ती को दूर करती है। दिल की सख्ती के बारे में पढ़ा था, तो दिल की सख्ती को दूर करने के लिए ये टिप है कि यतीम के सर पे आप हाथ और मिस्कीन को खाना खिलाएं। ये टिप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है, ये दो काम करें, खाना खिलाइए मिस्कीनों को, खाना खिलाइए जितना आप खाना खिला सकते, और यतीम के सर पे हाथ। यानी सिर्फ उसका हाथ रखने का मतलब ये नहीं है कि उसको स्पॉन्सर कर लिया, उनकी केयर करना, उनके लिए उनके मामलात में दिलचस्पी लेना, उनकी तरबियत की जिम्मेदारी लेना। और स्पॉन्सर करना भी बाहर क्या, उनको इस चीज की भी जरूरत है। अगर रिश्तेदारों में कोई यतीम है तो उसके तो डबल डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, क्योंकि एक तो और डबल अजर है, एक तो वो यतीम है, दूसरे वो आपका रिश्तेदार है, तो आपको दो अजर मिलेंगे, रिश्तेदारी निभाने का भी और यतीम की किफालत का। और अगर मिस्कीन है आपके कोई रिश्तेदार तो तब भी आपको डबल अजर मिलेगा, क्योंकि आप बाहर तो किसी मिस्कीन को दे देते हैं पैसे, कोई बात नहीं है, बाहर भी आप चैरिटी करते हैं, बाहर भी आप किसी ऑर्फनेज में यतीम खाने में दे देते हैं, लेकिन जो रिश्तेदार मिस्कीन और यतीम है ना, इनका आपको अजर ज्यादा है, इनका हक ज्यादा है, दो हक हैं इनके, मिस्कीन होने की वजह से भी और रिश्तेदार होने की वजह से। तो इनका हक तो सिर्फ वो ही दे सकता है, इनके साथ एहसान याद रखे सिर्फ वो ही कर सकता है जो सिर्फ अल्लाह से बदला चाहता है। उन्हें इन से तो कुछ मिलना है नहीं, बल्कि बाज दफा रिश्तेदार मिस्कीन है या यतीम है, उनकी तरफ से आपको कोई तकलीफ दे बातें सुननी पड़ जाती हैं, आपको कुछ कोई प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ जाते हैं, कोई आपको बात सुना देते हैं, तो तकलीफ ही होती है। तो अब इनसे अगर आप बदला चाहते हैं तो बदला तो नहीं मिल सकता। आप ये सोचते होंगे कि मैं बाहर कहीं दे दूं, इसको नहीं दूंगी, ये रिश्तेदार जो हमें बातें ही सुनाते हैं, इनसे हमें आज तक क्या मिला, कभी कोई सुख नहीं मिला। लेकिन याद रखिए, जब आपने इसको इन्वेस्टमेंट बैंक समझा ना, तो यहाँ पे जैसे कोई आपको ये तो हराम की वो होते हैं जो आपको वो देते हैं, दुनिया के बैंक जो सूद आपको देते हैं उसके ऊपर मुनाफा देते हैं, मगर देखिए अल्लाह का बैंक ऐसा है कि जहाँ पे सुभान अल्लाह ये दुनिया में आपको कहते हैं ना आपको 2% देंगे, और यहाँ पे आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये वाला अकाउंट अगर आपका खुलवाएंगे तो इसमें 10% आपको नहीं मिलेगा, तो ये भी समझना है कि इसमें डबल मिलना है आपको, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे ना यहाँ पे डबल मिल रहा है। और फिर वकूलु लिन्नासि हुस्ना, और लोगों के साथ लिन्नास, यहाँ पे क्या लिल मुस्लिमीन है, लिल मुमिनीन है, हाँ वो उनके साथ तो आप करेंगे ही, वो तो आपके भाई हैं, लेकिन यहाँ पे आम है, लिन्नास, नास में कौन है, लोग, सारे लोग, सबके साथ खूबसूरत बात करो, अच्छी बात करो, भली बात करो। भली बात का मतलब क्या होता है, कौन सी बात होती है, ये वैसे भी खूबसूरत बात हो, ब्यूटीफुल बात हो, ब्यूटी को कैसे डिफाइन करेंगे, जाहिरी तौर पे भी खूबसूरत हो, अच्छी बात हो, बातनी तौर पे भी खूबसूरत हो, यानी जाहिरी खूबसूरती क्या है इसमें, यानी नरम बात, अच्छा स्टाइल आपका जो होता है ना, नरमी के साथ प्यार से बात की जाए, अच्छी तरीके से बात की जाए, सुलझी बात की जाए, अदब के साथ बात की जाए, तमीज के साथ बात की जाए, लिहाज के साथ बात की जाए, और बातनी खूबसूरती क्या होगी कि उसका कंटेंट भी अच्छा हो, समझे, ये नहीं है कि आप जाहिरी खूबसूरती तो इतनी नरम प्यारी बात कर रही हैं लेकिन झूठ बोल रही हैं, ये नहीं है कि आप खूबसूरत बात कर रही हैं लेकिन चापलूसी करने लगी हैं, खुशामद करने लगी हैं, या कोई और आपकी बात में ऐसी है कि वो कहते हैं ना जैसे ठंडी ठंडी मारते हैं, गुस्से में तो नहीं बात की, बात भी कर दी लेकिन ऐसी चुभती हुई बात की बड़े प्यार से, मगर ये कि दूसरे को मार डाला, देखिए उसका कंटेंट भी तो अच्छा होना चाहिए। कूलू लिन्नासी हुस्न, सबके साथ ही अच्छा करना है, तो जो अपने उनके साथ कितना अच्छा करना है सोच। अब इसमें दोनों तरह के लोग हैं, बाज लोग ऐसे हैं सिर्फ अपने रिश्तेदारों में गुम रहते हैं, बाकी लोग दुनिया में जो मर्जी मुसीबत में पड़ा रहे, जो मर्जी इसके ऊपर कयामत आज टूट पड़े, उनको कोई बनी नहीं, हम तो अपनों के साथ ही बस करते हैं, हमारी जो बिरादरी के हैं, हमारी जो जुबान बोलने वाले हैं, हमारे जो इलाके के लोग हैं, बस उनको वही अच्छे नजर आते हैं, बाकी उसके अलावा उनकी बला से किसी के साथ कुछ भी होता रहे उनको परवाह नहीं होती, उनकी सारी अच्छाई सिर्फ उन्हीं के साथ है, अपनों के साथ। और दूसरी एक्सट्रीम पे कुछ लोग ऐसे हैं कि वो सिर्फ बाहर वालों के साथ ही अच्छा करते हैं, अपने चाहे उनके ऊपर कुछ भी गुजरती रहे, कोई तकलीफ में है उनका पूछना ही नहीं, अपने घर का पता नहीं है, दुनिया जहान को संवारने के लिए उन्होंने ठेका लिया, तो अपने घर के अंदर सबसे ज्यादा बुरे हैं, अखलाक में भी सबसे ज्यादा बुरी बात करते हैं, सबसे ज्यादा बुरा मामला करते हैं, और उनकी फिक्र परवाह नहीं है, लेकिन बाहर वालों के साथ इतनी प्यार से बात करते हैं कि बाहर वाले उनके अखलाक की तारीफें करते हैं, तो ये क्या बात है। यहाँ पे कहा गया लिन्नासी हुस्ना, सबके साथ अच्छी तरह बात करनी। अब अच्छा इसके अंदर एक और भी बात है, देखिए इसमें ये भी आ गया कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, काफिर भी हो तो आपने उसके साथ अच्छे तरीके से बात करनी, ये नहीं ये तो काफिर है इसके साथ तो आप गालियां दो इसको और बुरी तरीके से बात करो इसको, और इसके साथ हम अच्छी तरह क्यों बात करें। अब देखे हम गैर मुस्लिम मुल्क में रहते हैं तो वहां पे तो ज्यादा गैर मुस्लिमों के साथ मामला होता है, अब यहाँ पे तो हमें लगता है कि यहाँ पे तो ये इनका रोब और इनका हुकूमत और इनकी सारी वो है, वहां पे तो बड़े दब दब के बात करेंगे, बड़े खुशामदी तरीके से इस तरह बात करेंगे, जहाँ पे हमें पता है कि हम डोमिनेंट हैं वहां पे फिर हमारी हालात देख लें, तो फिर हम कैसे अपना दीन दूसरों तक फैला सकते हैं अगर हमारी बात में ही हुसन नहीं है। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब खास तौर पे जब दीन की बात हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया को वो बात जो दिल में उतर जाए, ऐसी बात कर, दिल नशीन बात, दिल नशीन पर आए, यानी अच्छी बात में फिर दीन की बात की भी खूबसूरती आ जाती है कि इस तरीके से बात की जाए। ये नहीं हम तो हक बात कहेंगे भाई, हम तो सीधी बात कहेंगे। बाद लोग ये कहते हैं भाई हम तो हक कहते हैं, हम हक, अब वो हक इस तरह दे के मुंह पे मारते हैं कि दूसरा बेचारा शर्म से पानी पानी हो जाए, या फिर वो ढीठ हो जाएगा, या वो जिद में आ जाएगा, कहेगा मैंने अब करना ही नहीं। तो ये कोई हुसन वाली बात नहीं, हक बात कहें लेकिन हक मारे ना दूसरे के मुंह पे। अच्छा बाद लोग इस तरह से फिर कहते हैं भाई हम तो कभी किसी की गीबत नहीं करते, जो बात है ना मुंह पे कहते हैं, साफ कहते हैं। अब मुंह पे साफ क्या कहते हैं, वो ऐसा तंज, ऐसे ताने देंगे कि दूसरा इंसान जो है ना उनके सामने आने से कतराएगा कि मैं इसके सामने बैठूंगी तो कोई ना कोई बात ना मुझे सुना दे, मेरी बेइज्जती ना करते। तो कभी कभी हम इस चीज को भी बड़ा वो समझते हैं कि हम बड़ा सामने बात करते हैं, हम बड़े देखो कितने साफ गो हैं, ये कोई साफ कोई नहीं। वही लुल्ली कुल्ली हूँ मजा दिल लो मजा, उन लोगों के ऐब चुनने वाला, ऐब गोई करने वाला, ताने देने वाला, उसके लिए वैल है। तो ये नहीं है बात के पीछे पीछे नहीं करते तो आपकी बहुत अच्छी बात है कि आप मुंह पे दूसरों के मारते हैं बातें। और जो बात का जख्म है ना, ये ऐसा जख्म होता है ये भरता नहीं है जल्दी। इसी तरह बाज दफा हम लोगों के साथ कहते हैं मैं तो मजाक कर रही थी, अब मजाक मजाक में आप उसकी ऐसी इज्जत उतारते हैं कि वो बेचारा को समझ नहीं आती कि अब मैं जवाब दूं तो क्या दूं, क्योंकि तो आप कह रहे हैं कि मैं मजाक कर रही थी। और अब आप वो इसको सीरियस भी नहीं ले सकता, सीरियस लेगा तो आप कहेंगे वो लो तुम मजाक भी नहीं बर्दाश्त करती। अब वो ना सीरियस ले सकता है ना आपको कोई जवाब दे सकता है। देखिए कुरान का हुक्म है कूनू लिन्नासी हुस्ना। अच्छा एक काम कीजिएगा, ये सिर्फ हिस्सा ना कूनू लिन्नासी हुस्ना, जिसको खूबसूरत कैलीग्राफी करनी आती है ना वो इसको खूबसूरत लिख के, ऐसे आप अपने घर में और चीजें लगाते हैं तो बजाय इधर हुए कि अपने बच्चों की तस्वीरें लगाई हुई हैं और लोगों की तस्वीरें सारी दीवारों पे भरी पड़ी हैं, कुरान की आयतों को लगाएं और इससे अपने घर को इसलिए सजाएं, ये नहीं कुछ सजावट की चीज की खातिर, इसलिए कि जब भी आपकी नजर पड़ेगी ना तो आपको याद आ जाएगा। खास तौर पे अपने सिटिंग रूम में अगर लगा लें जहाँ पे आप लोग बैठते हैं, फैमिली बैठती है, तो फूलों दिन नासी हुसना, लोगों से अच्छी तरह बात करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में फरमाया कि मेरे बंदों से कह दें कि वो अच्छी बात करें, क्योंकि शैतान दिलों में फूट डलवा देता है। लेकिन जब अच्छी बात नहीं ना करते थे कि आप किसी का मजाक उड़ाएंगे, किसी को मजाक मजाक में उसकी इज्जत उतारेंगे, तो वो उसके दिल में आपके लिए बड़ी इज्जत आएगी, क्या उसके दिल में आपका बड़ा मुकाम मर्तबा आएगा? नहीं आएगा। तो शैतान दिल में ना फिर फूट डलवा देता है। आप ऐसे ही काम, मैं तो बस ऐसे ही तुमसे फ्रैंक हो रही थी, तुमने इसको बस सीरियस ले लिया। तुम तो देखिए ना, क्या आप मजाक में अच्छी बात नहीं कर सकते? मुझे तो, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि देखें वो कोई मजाक नहीं होता जिसमें दूसरे की दिल आजार, आपका तो मजाक हो गया और दूसरा हर्ट हो गया, ये कैसा मजाक हो जिसमें आपने तो मजा ले लिया, ये तो मीननेस है, ये तो सेल्फिशनेस है। आप सोच रहे हैं कि मैं मजाक कर रही हूँ, आपका हो गया फन, आपका हो गया मजा, और आपके मजे में देखें आपने किसी को कितनी तकलीफ पहुंचा दी, सिर्फ अपने थोड़े से मजे के लिए, सिर्फ अपने थोड़ी देर के दिन दिल खुश करने के लिए। आपका दिल क्या दूसरों को तकलीफ दे के खुश होता है? खुद सोचिए कि आपका मिजाज कैसा है फिर। अच्छा हमारे यहाँ मजलिसें होती हैं तो उसमें क्या किया जाता है, अक्सर मजलिसों में एक को पकड़ लेते हैं, फिर उसकी वो बैशिंग शुरू करते हैं, वो बैशिंग शुरू करते हैं, और वो बेचारा शर्मिंदा होता है, वो खिसियाना हुआ जाता है। नासी हुसना उस वक्त ये बात याद कर लिया कर, लोगों से अच्छी बात करें, लोगों को हंसाने के लिए जरूरत नहीं है कि एक बंदे को शर्मिंदा किया जाए, उसको तकलीफ पहुंचाइए। अब वो दिल में उस वक्त उसके क्या महसूस हो रहा है आप क्या जाने, और आपका हो गया मजाक और आपके हो गए मजे, तो कितना घटिया ये एक शौक है, कितना घटिया शौक है कि इंसान मजा इस चीज से ले दूसरे को तकलीफ देगी, दूसरे को पोक करके, समझ लें आप दूसरे को सुइयां चुभा के मजा लेते हैं, कितना गंदा जहन है ना ये। तो सुई का तो जख्म फिर भी भर जाएगा, लेकिन ये जुबान का जख्म उसके कभी नहीं भरेगा। सोचते हैं फिर हम किसी को ऐसा करते हुए देखें कि कोई किसी को टॉर्चर करके मजा लेता है तो उसको क्या कहते हैं, कहते हैं उसको, उसको सिख साइको कहते हैं और बहुत बुरा समझते हैं उसको। और जो लोग मजाक में ऐसे करते हैं वो क्या करते हैं, अल्लाह ताला का तो हुक्म है कूलू लिन्नासि हुस्ना, सब उनके साथ अच्छी बात करो। अच्छा फिर एक बात और देखें, ये अच्छी बात करनी अगेन फिर उनके साथ तो बहुत अच्छी है, बहुत आसान है, जहाँ पे हमें हमसे कोई बड़े हैं, हमसे स्टेटस में बड़े हैं, उनके साथ तो बड़ी बिच बिच के बातें करते हैं। आम लोगों के साथ क्या करते हैं, असल आपको किसी का पता ही नहीं है कि वो कोई बड़ा आदमी है या बड़ी कोई चीज़ है, आपकी उसके साथ क्या बात होती है, कैसे बात करते हैं। तो फिर उसके बाद आपको पता चलता है कि ये तो फलां है, वो जो नामी ग्रामी वो बंदा है, तो फिर फौरन अच्छा आप वो, मैंने तो आपको पहचाना नहीं, तो आप पहले फिर क्यों उसको एक आम बंदा समझ के, एक आम बंदे के साथ आपका रवैया अलग है, और एक जब किसी का पता चल जाता है कि वो बहुत बड़े स्टेटस वाला है तो आपका रवैया अलग हो जाता है। तो आपने सबके साथ तो फिर अच्छा नहीं किया, फिर आपने तो ये किया कि पिक एंड चूज किया, जिससे हमें मतलब, जिससे हमें फायदा, जिसको हम बड़ा समझें उसके साथ तो अच्छे अच्छे बात करें, बाकी ये आम आवाम के साथ क्यों अच्छी तरह बात करें, इनको तो जरा पैर के नीचे ही रखना चाहिए, और अच्छी तरह बात की ना तो देखना सर पे चढ़ जाएंगे। यही है ना हमारा रवैया और यही हमारी सोच है, इतना शैतान ने हमें बहकाया था। हमारे अल्लाह ने तो कहीं कुरान में फरमाया जिन लोगों ने पूरा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कर लिया अब तक पढ़ के, बाकी लोगों तो नहीं कहूंगी जो यहाँ तक पहुंचे, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मुकम्मल किया वो बताएं, कहीं आपने ये पढ़ा है कि अच्छी तरह बात ना करना क्योंकि लोग सर पे चढ़ जाएंगे, और लोग तो तुम्हारे सर पे चढ़ गए तो बहुत प्रॉब्लम होगी। अल्लाह ताला ने तो हर एक तरह की गाइडेंस दी है ना हमें, तो कहीं ये फरमाया नहीं, ऐसा फरमाया ना, ये हमें किसने सिखा दिया, शैतान के काम है। हमें तो ये बताया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने भाई को देख के मुस्कुराना भी सदका है, तो मुस्कुरा दिया करो देख के, ये भी ऐसे ही तुमने सदका कर दिया, चलो और नहीं सदका कर सकते यही कर लिया करो। तो बात यह है कि हर एक के साथ अच्छी तरह बात करनी है, हर एक के साथ भलाई की बात करनी है, और इसमें हम सबको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो घर में हो हम या बाहर हो, ये नहीं कि घर में हमारी टॉक डिफरेंट है और बाहर जब लोगों के साथ है तो हम इतने नाइस हैं कि बस, और घर में बच्चों से या हस्बैंड से पूछें तो वो कहेंगे कि अल्लाह की पनाह है कि ये क्या है इसकी जुबान, ये ना हो, ये भी ना हो कि किसी को खुश करने के लिए झूठ कह रहे हैं या खुश आमदे कर रहे हैं या कुछ और बातें कह रहे हैं, और ये भी ना हो कि डबल फेस्ड हो जाए कि जिसके सामने गए उसके साथ अच्छी बात कर ली और कह दिया मैं तो कुरान के इस हुक्म पे अमल करें कूलू लिन्नासि हुस्ना, और दूसरों की बुराई करने लग गए ताकि इसको खुश कर लें ना, अच्छी बात जो हमने करनी है। तो इसको मुसलसल प्रैक्टिस से हमने इसको लेकर आना है और सबके साथ करनी, चाहे वो हमारा नौकर है, चाहे वो कोई फकीर है, चाहे कोई मिसकीन है, चाहे कोई कराबतदार है, चाहे कोई यतीम है, चाहे किसी ने हमारे साथ अच्छी नहीं भी बात की थी। वाकिमुस्सलात व आतुस्सकात, अब ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कायम करो नमाज को और अदा करो जकात को, पहले हमने पढ़ा है, और देखिए सुभान अल्लाह बनी इसराइल से भी नमाज का कायम करने का वादा लिया गया था कि वादा करो इसको और जकात देने का वादा करो। अब आप ये देखिए कि नमाज और जकात का हुक्म कहाँ जाके आ रहा है। हम तो सोचते हैं कि कुल दीन ही क्या है, नमाज और ज़कात, और जो ये करने लगे वो सोचते हैं कि हम तो दीनदार हो गए, मैं तो बड़ी दीनी हूं, क्यों सोम और सलात की पाबंद हूं, यही समझते हैं ना, वो दीनदार कहलाएगा जो नमाज रोजा ज़कात कर ले। हालांकि यहां से पता चलता है ये नहीं कि नमाज रोजे या ज़कात का दर्जा कम है, नहीं, बल्कि यहां से ये पता चलता है कि जिसको हम कुल दीन समझ लेते हैं ना वो कुल दीन नहीं है, उससे पहले कई चीजें हैं, कई करने के काम हैं, और वो क्या है, तौहीद, और उसकी सारी जो भी मैंने आपको बातें बताई, वालदैन के साथ एहसान, कराबतदारों के साथ एहसान, यतीमों के साथ एहसान, मिस्कीनों के साथ एहसान, और बात बात बात, ये जो जुबान से निकली हुई बात है कभी वापस नहीं आ सकती, कई चीजें लौट सकती हैं, लेकिन ये वो तीर है जो कि निकल गया ना एक दफा, ये वापस नहीं आना। इसीलिए कई लड़ाइयां इसी वजह से होती हैं, ये जुबान की कई बात कोई मुंह से निकल जाती है उसकी वजह से। ठीक है, तो इसके ऊपर खास तवज्जो दें। उसके बाद है फिर नमाज और ज़कात का हुक्म। और देखें, एक बात सिर्फ कहूंगी क़याम नमाज के हवाले से, क़याम सलाह के हवाले से, हालांकि पहले हम पढ़ भी चुके हैं इसके ऊपर और बार बार आएगा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में दो भाई थे, उनमें से एक दूसरे से 40 दिन पहले फौत हो गए। अब दोनों का अमल एक जैसा था, दोनों एक साथ मुसलमान हुए। इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जो पहले मरने वाला था ना, उसकी बड़ी तारीफ बयान की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या दूसरा मुसलमान नहीं था? सहाबा ने फरमाया, क्यों नहीं था जो बाद में मरा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम क्या जानो, जो दूसरे की नमाज उसने अपने भाई से 40 दिन ज्यादा पढ़ी, उसकी नमाज की काउंटिंग कितनी हो गई, 40 दिन ज्यादा हो गई, उसने उसको किस दर्जे पे पहुंचा दिया, कितना ऊंचा उसका दर्जा कर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि देखो, अगर किसी के घर के आगे नहर बह रही हो और वो उसके अंदर नहाए 5 दफा दिन में, तो क्या उसके ऊपर कोई मैल कुचैल रह जाता है बाकी? सहाबा ने फरमाया, नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज पढ़ने वाला भी ऐसे ही है, तो तुम्हें क्या पता कि वो जिसने 40 दिन की नमाजें ज्यादा पढ़ी पहले वाले से, उसने कितना बुलंद मर्तबा, कितना ऊंचा मकाम तक उसको पहुंचा दिया। देखा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे नमाज का शौक दिलाया लोगों को? कभी आपने लोगों को नमाज को का कहा है, उसकी तरफ तवज्जो दिलाई है? जरूर यकीनन दिलाई होगी, लेकिन कभी इस तरह से शौक दिलाया जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने प्यारे तरीके से शौक दिलाया। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौक दिलाया। तो फिर सेकंड क्या है? जकात, जकात की अदायगी, जकात अदा करो। और जकात भी वही है, माल में इंसान जो अपने 2.5% निकाल देता है अल्लाह की रजा की खातिर, ये भी अमीरों से ली जाती है और गरीबों में तकसीम की जाती है। और इसमें क्या, ये सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ है, चंद हाथों में वेल्थ सिमटी नहीं रहती। क्योंकि तो जैसे जिस्म में अगर खून दौड़ता रहे ना, सर्कुलेट होता रहे, तो ही जिस्म हेल्दी रहता है। अगर खून एक जगह जमा हो जाए तो क्या होगा, तो जिस्म बिल्कुल हेल्दी नहीं रहेगा, तो बीमार हो जाए, उसका काटना पड़ेगा। तो इसी तरह सोसाइटी का हाल होता है, अगर उसमें सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ ना हो ना, अमीरों से लेकर गरीबों तक ना पहुंचे, तो क्या होगा, ये सोसाइटी कभी एक हेल्दी सोसाइटी नहीं है। आप बड़ी डरा देने वाली हदीस, आप एक दफा काबा के साइड में बैठे रहते कि एक साहबी तशरीफ लाए, देखा कि आप फरमा रहे, रब्बे काबा की कसम, वो नुकसान वाले हैं, वो नुकसान वाले हैं, वो नुकसान वाले हैं। तो इन साहबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आपके कुर्बान, वो कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बहुत माल वाले, सिवाय उसके जिसने माल खर्च किया इधर भी उधर भी, आगे भी पीछे भी, दाएं भी बाएं भी, लेकिन ऐसे लोग बहुत ही थोड़े हैं जो माल को खर्च करें अल्लाह के रास्ते में, बस वो हैं जो बच जाएंगे, बाकी हलाक हो जाएंगे। ज़कात, सिर्फ ज़कात ना देने के ऊपर सोचें, सदका भी दे। हमेशा हम बोलते हैं यहाँ पे ज़कात लग जाएगी कि नहीं, और अगर नहीं भी ज़कात लगती, आपने वैसे हेल्प करनी है, सदका दे दें, लेकिन ज़कात के अलावा भी निकालें। सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलम मिनकुम, फिर मुंह मोड़ लिया तुमने मगर बहुत कम तुम में से ऐसे थे जो, यानी जो जिन्होंने माना, ये शरीयत के जो फंडामेंटल्स है ना, इनको बहुत ही कम लोगों ने इनको पकड़े रखा था, हमें रखा, ज्यादातर ने मुंह मोड़ लिया, ज्यादातर टर्नड अवे, टर्नड अवे फ्रॉम, एराज किया, परवाह ही नहीं की अल्लाह के हुक्म की। और आज देख लें इन चीजों को, इकामत सलाह कितनी हो रही है हमारे माशरे में, मस्जिद वीरान में, कई घरों के अंदर बेनमाजी, जकात अदा नहीं हो रही। इसी वजह से देखें हमारे माशरे में इतना अनबैलेंस्ड है ना, अमीर अमीर से अमीर तर है, गरीब गरीब से गरीब तर। क्यों है? क्योंकि जकात नहीं दी जा रही, सारी वेल्थ एक जगह जमा हो गई। ताबतदारों के साथ एहसान तो छोड़े, किसी के बातचीत रखना, किसी के ताल्लुकात रखना वो ही बहुत बड़ी बात समझी जाती। यतीम और मिस्कीन का कोई पुरसाने हाल नहीं, विरासत वगैरह में यतीमों का तो बिल्कुल ही पूछा नहीं जाता। और वालदैन के साथ एहसान का ये हाल है कि वालदैन रोते फिरते और शिकायत औलाद के हाथों जो दुख वो उठाते वो उसकी दास्तानी घर घर में। और कुलूल नासे हुसना तो देख लें आप, कि चाहे हम दीन वाले, दीन पढ़ने वाले, दीन पढ़ाने वाले हों या दूसरे लोगों, लोग अपनी इज्जतें बेचारे बचाए फिरते हैं जो इनसे खुदा की पनाह है, ये तो खड़े खड़े किसी की इज्जत उतार देते। तो हमें अच्छी तरह बात तो करनी ही नहीं आती। मैं माजरत के साथ कहना चाहती हूँ, जो लोग खासतौर पर दीन की तरफ आ जाते हैं वो अपने आप को समझने लगते हैं अब तो हम जितनी मर्जी सख्ती करें ना हमारे ऊपर हर चीज़ जायज़ हो गई। नहीं, कोई भी नासिक उससे अच्छे तरीके से बात करें, भलाई की बात करें, प्यारी बात करें। किसी को लाइसेंस नहीं है मिल जाता कि वो दूसरों के साथ, हाँ कभी किसी को गुस्सा आ गया, कभी किसी के साथ ऊंच नीच, कभी कभार कोई ऐसी बात हो गई, वो एक अलग बात, इसको नॉर्म तो ना बनाइए, इसको अपनी आदत ना बनाइए।